शर्मा जी, तमाम नई जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मेहता साहब से, जिनके निर्देशन में पूरा डाइस का क्रियान्वयन पूरे देश में हो रहा है और जिनके विश्लेषण के आधार पर बहुत सारे शोध और बहुत सारी जानकारियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जा रही हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत में अपना
Respected Mr. Singh, CEO of Jabalpur District, Mr. Gaharwal, my colleagues, Mr. Shailendra Sharma, Naveen Bhatia, Mr. Vinay Pandey, Mr. Deepak Verma, and dear participating officers, coming all over from Madhya Pradesh. मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और उसके लिए मैं राज्य शिक्षा केंद्र और जिला शिक्षा केंद्र जबलपुर दोनों का धन्यवाद देता हूँ. पिछली वर्कशॉप जो हमने डाइस के ऊपर की थी यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जैसा श्री दीपक वर्मा जी ने बताया था कि 2006 में की थी, कान्हा में की थी और एक और वर्कशॉप हमने यहाँ पर की थी, उसमें मैं किसी कारणवश भाग नहीं ले पाया था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यशाला में उपस्थित हूँ. उसके लिए मैं तहे दिल से राज्य सरकार का और हमारे जिला के जो शिक्षा अधिकारी हैं, सभी लोग शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू फॉर योर वेरी वार्म वेलकम और रियली इट इज रियली वार्म, द वेदर इज ऑल्सो वार्म. वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम दिल्ली और जब हम सुबह दिल्ली से आए थे तो टेम्परेचर इतना ठंडा था, इतना माहौल वहाँ पे ठंडा था, फोक थी, सब कुछ था, स्वेटर स्वेटर के ऊपर बड़ी सी जैकेट, जैकेट के ऊपर और कुछ, और जब हम यहाँ पर आए तो इतना गर्म जोशी से आपने स्वागत किया और वेदर भी वास्तव में बहुत ही शानदार है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दो दिनों में ये कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और महत्वपूर्ण इस विषय में होने वाली है कि हमारी जो डाइस की गुणवत्ता है उसके ऊपर हमारे सिंह साहब ने भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी गुणवत्ता इस कार्यशाला के माध्यम से और अच्छी हो जाएगी. मुझे कहते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अब हमारी गुणवत्ता उतनी खराब नहीं है जितनी आज से 4-5 साल पहले हुआ करती थी. अब द क्वालिटी ऑफ डेटा इज एट ऑल इज नाउ सेटिस्फैक्ट्री. देयर आर फ्यू वेरिएबल्स विच स्टिल नीड अवर अटेंशन, but yes, overall we can say that DICE data, not only in the state of the Madhya Pradesh but across the country, is well above the satisfactory level. kafi acha ho chuka hai, lekin main ye bhi manta hu ki kisi bhi system ki gunvatta ko badhane ke liye ek varsh, do varsh ya kabhi kabhi 5 varsh bhi kam pad jate hain. It is a continuing process and it will take time, but whatever the efforts which we have made in the recent past, which is very well reflected in the our data, the quality of our data, the coverage of our data, the dissemination of our data, the sharing of our data at all the levels. 5 saal pehle hamara data school tak nahi pahunchta tha, aaj school report card Hindustan ke kareeb kareeb sabhi 13 lakh schoolon tak pahunchta hai. Aaj district report card chahe block ke star par jo hamari block reports hain वो शेयरिंग ब्लॉक लेवल पे हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, राज्य स्तर पर हो रही है और केंद्र स्तर पर तो काफी, राष्ट्रीय स्तर पर काफी बार हम एक वर्ष में इस डेटा को शेयर करते हैं. मेरा ये निश्चित मानना है कि हमने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं और ये सारे प्रयास हमारी जो डेटा की गुणवत्ता, कवरेज, क्वालिटी, डिसेमिनेशन, शेयरिंग है उसमें बिल्कुल साफ साफ झलक कर आ रही है. जहाँ तक कवरेज का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि करीब करीब सभी विद्यालय जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की तरफ कार्य कर रहे हैं, 1 से 8 कक्षाओं की शिक्षा मुहैया करवा रहे हैं, वो अब हमसे जुड़ चुके हैं। लेकिन आप भी सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अभी भी ऐसी बहुत सारी विद्यालय हैं जो 1 से 8 कक्षाएं शिक्षा देते हैं कक्षाओं की, वो अभी हमसे जुड़ना बाकी है। और उसमें कुछ सरकारी स्कूल्स भी हैं, केंद्रीय विद्यालय भी हो सकते हैं, नवोदय विद्यालय भी हो सकते हैं, तिब्बतीयन स्कूल भी हो सकते हैं, ओपन स्कूल भी हो सकते हैं, वो सैनिक स्कूल भी हो सकते हैं, वो मिलिट्री स्कूल भी हो सकते हैं, या दूसरे मदरसा जो रिकॉग्नाइज मदरसा है, या दूसरे इस तरह के स्कूल्स हैं जो मान्यता प्राप्त तो है लेकिन अभी भी और 1 से 8 की कक्षाएं शिक्षा दे रही हैं, वो अभी भी हमसे जुड़नी बाकी है। हमने पिछले कुछ वर्षों में पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया है, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी अभी ऐसी कुछ स्कूल्स हैं जो हमसे जुड़नी बाकी है। आपको पता है इस बार हमने और शैलेंद्र जी ने विशेष प्रयास किए, और केंद्रीय विद्यालय के चेयरमैन साहब हो, चाहे CBSE के चेयरमैन हो, चाहे नवोदय विद्यालय के चेयरमैन हो, उन सब ने एक स्पेशल खास लेटर, इस बार एक पत्र अपने सभी स्कूलों को लिखा है कि आप डाइस के जो हमारे CRC कोऑर्डिनेटर्स आए उनके साथ में सहयोग करें और सारा पत्र भर के दें। मुझे नहीं पता ये मैसेज हमारे उन स्कूलों तक किस तरह पहुंचा कि राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 दिन से कम 10 फॉर्म हमारे पास में भर के आ गए हैं, जबकि ये हमें नहीं देना है। एक तमिलनाडु से आ गया, एक केरल से आ गया, एक उत्तर प्रदेश से आ गया, ऐसा कुछ मैसेज चला गया है इन विद्यालयों के पास जो अब तक हमसे नहीं जुड़े थे, कि इनके प्रपत्र भर भर के हमारे राष्ट्रीय स्तर पर आ रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन दैट ऑल्सो शोज अस आवर एफर्ट, उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है। तो आपकी भी अगर ऐसी कोई स्कूल होगी जो अगर हमें सीधा डेटा दे देती है, तो हम आप तक पहुंचाएंगे और हम आपसे पूरा निवेदन करेंगे कि आप उनके डेटा का पंचिंग करवाएं, उसकी डेटा की एंट्री करवाएं। तो डेटा जो हमारा उसकी कवरेज है, डेफिनेटली द कवरेज हैज इंप्रूव्ड लाइक एनीथिंग। कुछ लोग कहते हैं साहब प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स है, प्राइवेट एडेड स्कूल्स है, डाइस के अंदर डेटा नहीं देते हैं। ये बात आज से 5 साल पहले अगर आप कहते हैं तो मैं बिल्कुल मान लेता, लेकिन आज अगर आप कहेंगे, जबकि 2,50,000 प्राइवेट एडेड एंड अनएडेड स्कूल्स है, करीबन 20% ऑफ द 1.3 मिलियन ऑफ स्कूल्स इंपार्टिंग एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, तो ये मैं बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम का डेटा भी हमारे पास में है, दून स्कूल का डेटा भी हमारे पास में है, शिमला की बड़ी स्कूल जिसका नाम मैं भी शायद भूल गया हूँ उसका भी डेटा हमारे पास में है। तो इन बड़ी बड़ी स्कूलों का, चाहे वो बड़ी सरकारी स्कूल हो या छोटी प्राइवेट स्कूल हो, ये सारी अब जो 1 से 8 शिक्षा दे रही है वो हमसे जुड़ चुकी है। लेकिन ये मानने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि सारे प्रयासों के बावजूद भी अभी कुछ स्कूल्स हैं जो हमसे जुड़नी बाकी है। और शैलेंद्र जी ने अभी आपको कहा राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में अब हमारी जिम्मेवारी केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनरिकॉग्नाइज स्कूल टू बी कवर्ड अंडर द डाइस। अभी मैंने आपका प्रपत्र देखा, उसके मुख पृष्ठ पर मैं नजर दौड़ा रहा था तो मैंने पाया कि उसमें अनरिकॉग्नाइज स्कूल का जिक्र नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखें, और अगर अनरिकॉग्नाइज स्कूल मध्य प्रदेश में नहीं है तो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत सरकार का अब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत मानना है कि अब हमारे पास में सारी ऐसी संस्थाएं जो 1 से 8 कक्षाओं की शिक्षा मुहैया करवा रही है, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो गैर मान्यता प्राप्त हो, वो सब डाइस से जुड़ जाए। तो कवरेज एक हमारा सबसे महम द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ डाइस इज दैट वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द ऑल द स्कूल्स इंपार्टिंग एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। दूसरा हमारी सबसे मुख्य अचीवमेंट, आप सबका मुख्य अचीवमेंट है कि हमने अपने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हिंदुस्तान के सभी 635 जिलों के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट की स्थापना कर दी है। वहां पर आप जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये सभी उपलब्ध हैं, न केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि राज्य स्तर पे सभी 35 राज्यों के अंदर अब हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की नियुक्ति कर दी गई है। अभी शैलेंद्र ने बताया कि जैसे आप सबको पता ही है कि अब आगे आने वाले समय में, बहुत ज्यादा दूर नहीं, अगले वर्ष ही, उसके पहले ही अब ब्लॉक स्तर पर भी MIS कोऑर्डिनेटर आ जाएंगे अगले वर्ष से, तब आपकी भूमिका बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी आप और कोई रोल अदा कर रहे हैं, बट अगले साल जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा डाइस का एट अ लेवल ऑफ ब्लॉक लेवल, तो मेरा निश्चित रूप से मानना है कि आपको अपनी भूमिका भी चेंज करनी पड़ेगी। सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग रोल आपको ज्यादा अदा करना पड़ेगा, और वो भी हमें मदद करेगा डाइस की केवल टाइम लैग को और कम करने के लिए ही नहीं, बट डाइस की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ क्वालिटी है उसको और बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि दूसरे राज्य हमारे इसे बहुत अभी आगे हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ब्लॉक लेवल पे MIS कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी है। कुछ ऐसे राज्य हैं कर्नाटक जैसे जिन्होंने CRC लेवल पर डाइस की जो डेटा एंट्री होती है, और हमारा पूरा सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट करता है, किसी भी स्तर पर अगर आप चाहें कि डाइस की डेटा एंट्री हो जाए तो हम आपको पूरा, मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। लेकिन राज्य, दूसरे राज्य बहुत आगे हैं और हम भी कम कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले 1 या 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में भी निश्चित रूप से ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर डेटा एंट्री होनी शुरू हो जाएगी, और ये हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी डाइस की डेटा की क्वालिटी और कवरेज दोनों बढ़ाने में, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी उपलब्धि है जो हमने हासिल की है आपके माध्यम से, जो कुछ आज हमने हासिल किया है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, और आगे आने वाले वर्षों में जो हम हासिल करना चाहते हैं या कुछ कमियां रह गई है उसको दूर करना है, वो भी केवल आपकी मदद से ही दूर की जा सकती है। जैसा शैलेंद्र जी ने बताया कि हम तो केवल आपको मेन एक्टर ऑफ द होल लाइफ एक्सरसाइज इज यू, हम तो केवल आपको कुछ सुझाव देते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, बट अल्टीमेटली वट एवर वी वॉन्टेड टू अचीव इट कैन बी अचीव थ्रू यू ओनली, एंड वट एवर वी हैव अचीव्ड टिल नाउ इट इज अचीव्ड बिकॉज ऑफ योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो जो कमियां रह गई है उसको सुधार करना है, वो भी आपके माध्यम से ही किया जा सकता है। विथ फॉर्मूला 44 और कुछ भी नहीं है, केवल यही है कि आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन से जो बाकी के मुद्दे बच गए हैं उसको अगर हमें ठीक करना है, सुधार करना है, तो यू हैव टू प्ले अ वेरी एक्टिव रोल, एंड आई एम हैप्पी टू नोटिस दैट यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पास्ट, बट नाउ आफ्टर द राइट टू एजुकेशन एक्ट यू कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज द राइट टू एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम इज कंसर्न। टाइम लैग की मैं बात कर रहा था, आप डेटा ऐसा इकट्ठा करते हैं जैसे जादूगर जादू दिखाता है। हम राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के सोचते हैं कि साहब इतने वेरिएबल डाल दिए, कैसे ट्रेनिंग होगी, कौन प्रशिक्षण देगा, हेडमास्टर तक बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। हमने भी प्रयास किए एडुसेट के मार्फत, हमने 21 सितंबर और 27 सितंबर को 2 प्रोग्राम किए जो पूरे हिंदुस्तान में देखे गए, हिंदी राज्यों के अलग से किया, इंग्लिश में जो समझते हैं बोलने वाली भाषा इंग्लिश राज्यों में अलग से हमने किया। तो ये ट्रेनिंग आपने भी दी, हमने भी दी, तो टाइम लैग की बात मैं कर रहा था। आपके प्रयास के माध्यम से अब नेशनल लेवल पे डेटा को इकट्ठा करने में और डेटा को डिसेमिनेट करने में केवल 1 साल का ही अंतर रह गया है, जो कि पिछले पहले 7 या 8 वर्ष होता था। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द स्टेट लेवल, दिस गैप बिटवीन द डेटा कलेक्शन एंड डेटा डिसेमिनेशन इज ओनली फ्यू मंथ। और मैं आपको ये भी बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जहां तक हमें जानकारी मिल रही है पूरे हिंदुस्तान में, इतना कम समय होने के बाद में भी ट्रेनिंग हर स्तर पर हुई है, डेटा इकट्ठा किया जा चुका है, और बहुत से ऐसे राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, या दूसरे छोटे छोटे राज्य हो, वहां पर डेटा एंट्री करीब करीब खत्म हो गई। 7 अक्टूबर 2010 में आंध्र प्रदेश ने पूरा डेटा, राज्य के डेटा को इकट्ठा कर लिया, कर्नाटक ने पूरा खत्म कर लिया डेटा पंचिंग, और तमिलनाडु भी ऑलमोस्ट खत्म करके उसको अब चेकिंग कर रहे हैं। और तमिलनाडु कर्नाटक का ये डेटा एंट्री होने के बाद में हर स्कूल का वापस प्रिंट आउट लिया गया है और वो वापस स्कूल तक पहुंचाया गया है, और स्कूल हेडमास्टर को और CRC के मार्फत ये निश्चित किया गया है कि वो ये देखें कि क्या भरी हुई जानकारी सही है नहीं, और अगर कुछ उसमें करेक्शन है तो वापस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके या जिस लेवल पे भी डेटा एंट्री हो रही है वहां पे करेक्शन किए गए हैं। दिस इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। इतने कम समय में केवल प्रशिक्षण देना, डेटा कैप्चर फॉर्मेट को प्रिंट करवाना, चाहे सॉफ्टवेयर से हो या प्रेस से हो, उसके बाद में डेटा को फॉर्मेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, फॉर्म को भरवाना, वापस इकट्ठा करना, उसकी चेकिंग करनी सीआरसी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद में डेटा की पंचिंग करनी, वापस उसको प्रिंट करके स्कूल तक ले जाना और फिर वापस आकर उसमें करेक्शन करके डेटा को फाइनल करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे सौंपना, ये तो बिल्कुल आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जैसे जादूगर कर रहा है। तो जादूगर तो हाथ की सफाई काफी करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई हाथ की सफाई का कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज डाइस इज कंप्लीटली ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम, देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी मैनिपुलेशन। जो आप डेटा देते हैं वही डेटा, चाहे वो वेबसाइट पे हो, चाहे वो डाइस के 8 पब्लिकेशन जो हम भारत सरकार की सहायता से हर वर्ष निकालते हैं, चाहे वो हो, वी हैव अडॉप्टेड ए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। अगर डेटा की गुणवत्ता सही नहीं है तो वो नेट के ऊपर भी वही है और आपके जो पब्लिकेशन है उसमें भी वही है। अगर गुणवत्ता सही है तो वट एवर यू हैव गिवन, यू गिव अस, दैट इज वेरी ऑनेस्टली, फेथफुली, सिंसियरली वी डिसेमिनेट एंड पुट इट टू द पब्लिक डोमेन। बिकॉज हमारा ये मानना है कि अगर डेटा पब्लिक डोमेन में आएगा तो हो सकता है कि कुछ लोग उसको यूज करेंगे, और अगर उसको यूज करेंगे तो डेटा की गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, और प्रश्न चिन्ह अगर लगा तो निश्चित रूप से हमें ये और मदद करेगा कि हमारे डेटा की क्वालिटी को बढ़ाने में। तो यही एक सीधा साधा रास्ता है जो हमने अपनाया है, और हम आपसे पूरी पूरी गुजारिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं कि 2010-11 का जो हमारा आंकड़ा अब है वो निश्चित रूप से पिछले साल के डेटा से ज्यादा गुणवत्ता वाला होना चाहिए, तभी जाकर चाहे ये वर्कशॉप हो, कार्यशाला हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर अभी हमने भुवनेश्वर में कार्यशाला की, चाहे वो हो, चाहे पुरी में की है, चाहे अमृतसर में की है, चाहे अहमदाबाद में की है, कहीं भी की हो, अगर ये सब हमारी डेटा की क्वालिटी और कवरेज के अंदर रिफ्लेक्ट करता है तब तो बहुत ही शानदार बात है, और अगर ये सब नहीं दिखता है तो एक ही औपचारिकता हो जाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में प्रयास किए हैं, आप निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे और हमें ये पूरा पूरा मदद करेंगे कि कवरेज बढ़ जाए, हमारी टाइम लैग है उसमें और थोड़ी कमी आ जाए और जल्दी लोगों को, यूजर्स को उपलब्ध हो जाए, और क्वालिटी तो निश्चित रूप से जो हमारा मेन प्रयास है क्वालिटी को बढ़ाने में, निश्चित रूप से ये सारे प्रयास हमें, सारे जो हम कर रहे हैं हमें मदद करेंगे। डेटा गैप की मैं बात करना भी पसंद करूंगा। अब आज की तारीख में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो, मैं केवल दूसरे जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है उनकी बात करना या नहीं उचित समझता, लेकिन मैं डाइस के बारे में ये कह सकता हूँ कि डाइस इज हियर टू स्टे, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान चले या ना चले, चाहे डाइस बंद, बस डाइस चलता रहेगा। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दैट डाइस विल कंटिन्यू इन ईयर विच फॉलो, निरंतर ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे राज्यों में, मध्य प्रदेश ने और बाकी के सभी हिंदुस्तान के राज्यों ने टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा एंड द कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन अब समझ लिया है, उनको ये पता चल गया कि अगर डेटा सही समय पर, सही सही गुणवत्ता वाला डेटा अगर सही समय पर उपलब्ध हो जाए उन सभी बिंदुओं पर जिसके ऊपर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की नियोजन करने के लिए काम आता हो, तो दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट वन एंड इन मैनी स्टेट, नॉट इन 1, 2, 3, 4 स्टेट, मैनी स्टेट दैट इज नाउ ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सो फार एज द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न। बाकी सारे जो पैरेलल सोर्सेज है उन स्टेट्स ने अपने आप बंद कर दिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य, चाहे आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, चाहे वो कुछ और स्टेट, हिमाचल प्रदेश हो, उन सभी राज्यों के अंदर डाइस ही अब एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन का डेटा इकट्ठा करता है और डिसेमिनेट करता है, और दूसरा कोई सोर्स नहीं है। और मुझे ये पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है, आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर डाइस वुड बी द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सो फार एज द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। केवल हमारा ही ऐसा सोर्स है जो स्कूल से लेकर, चाहे वो क्लस्टर हो, चाहे वो खंड स्तर हो, जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो और नेशनल स्तर हो, इन सभी स्तरों के ऊपर डाइस इज द ओनली सोर्स विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन ऑन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एक बात मैं और यहाँ पे बताना है, उचित समझूंगा, पहली बार मैं जब मध्य प्रदेश आया था तो उस समय 1994 में जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की नींव रखी जा रही थी, उसके जो पैरामीटर्स थे वो बन रहे थे उस समय, तो सबसे पहले यहाँ पर करीबन 24 एक्सपर्ट्स की नेशनल लेवल से एक टीम आई थी, तो डॉक्टर डेविड चोबॉर्ड उसके लीडर थे, और मैं भी उस समय मुझे कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं था उस समय, तो मैं भी उस टीम का एक मेंबर था। और उस समय मुझे अच्छी तरह से अभी भी याद है कि अशोका होटल जो भोपाल में है उसमें वो कार्यशाला हुई थी, और करीबन 20 दिन हम उसी होटल में, अशोका होटल में रहे थे, और मुझे ये देखते हुए आज खुशी हो रही है कि उस समय के दीपक और आज के दीपक के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। उस समय उन्होंने केवल एंट्री किया था, लेकिन आज अब वो पूरे मध्य प्रदेश के डाइस के मैनेजर हो गए हैं। ये मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है पर्सनली कि ही हैज रीच टू दैट पर्टिकुलर लेवल। व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड इन मध्य प्रदेश सो फार एज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंसर्न, ही हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वी एक्सपेक्ट दैट, वी प्रिज्यूम दैट ही विल कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 94 की बात मैंने अभी क्यों की। 94 में जब मैं यहाँ आया था, और जैसा मैंने बताया कि डीपीईपी उस समय शुरू होने वाले थे, उसके पैरामीटर्स बन रहे थे, पीटीआर क्या होना चाहिए, एसईआर तो उस समय इतने बात नहीं थी, उस समय मुद्दे केवल वही थे जो आज भी हम वही बात कर रहे हैं। उस समय के एसपीडी थे मिस्टर मिश्रा, और मुझे पर्सनली ध्यान है कि मैंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, हालांकि मुझे उस समय कुछ अनुभव नहीं था, तो मेरे साथियों ने रोका कि ऐसे प्रश्न मत, अनकंफर्टेबल का प्रश्न मत पूछो। तो मैंने पूछा था कि आपकी आप एलिमेंट प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, प्लान बनाने की बात कर रहे हैं, मैं भूल गया कितने डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोग्राम शुरू में मध्य प्रदेश में चला था। उस समय हमने मुद्दे उठाए कि आपका एंट्री रेट कितना है, आपका एडमिशन रेट कितना है, आपका कंप्लीशन रेट कितना है, रिटेंशन रेट कितना है, तो कोई जवाब नहीं था उस समय। लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख इस वक्त भी हो रहा है कि जो मुद्दे हमने 1994 में उठाए थे, आज वो मुद्दे आज भी रिलेवेंट है, आज वो इरिलेवेंट नहीं बन गए हैं। तो भैया उस समय हम कहते थे अब डेटा नहीं है, एलिमेंट्री एजुकेशन में पैसा नहीं है, आज पैसा इतना है कि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कार्य योजना तो हम फर्स्ट क्लास बनाते हैं, वार्षिक कार्य योजना जो AWP&B है वो तो बहुत शानदार बनाते हैं, हम खूब पैसा मिलता है, लेकिन उसका उस पैसे का उपयोग कितना परसेंट आप कर पाते हैं, 60% 70% शायद कर पाते हैं, और उसमें से भी 90% हम स्कूल बनाने में, भवन बनाने में, एडिशनल क्लासरूम देने में, हैंडपंप लगाने में, पानी देने में, टॉयलेट बनाने में, गर्ल्स टॉयलेट बनाने में, इस सब में हम खर्च कर देते हैं, लेकिन रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज है, इनोवेशन है, रिटेंशन के ऊपर स्टडीज करनी है, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए कोई स्टडी करनी है, तो मेरे ख्याल से अभी भी हम काफी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में हम 1994 में हैं। हम प्लान लगातार बना रहे हैं, डेटा हमारे पास में डिसएग्रीगेटेड लेवल पे है, हर उस लेवल पे जिस लेवल पे डेटा चाहिए वो आपको रेडी टू यूज फॉर्म के अंदर डाइस के अंदर अवेलेबल है, लेकिन आज भी हमारा बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे कक्षाएं छोड़ के बीच में ही छोड़ के 2 साल सिस्टम में रहते हैं, 2.5 साल सिस्टम में रहता है, उसके बाद में लड़का लड़की कोई भी हो बच्चे वो विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, दैट्स कॉजिंग सीवियरली टू द एफिशिएंसी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो मुद्दे केवल वही है, लेकिन नए नए योजनाएं आ गई है, सर्व शिक्षा अभियान है, अब राइट टू एजुकेशन है, योजनाएं हमेशा का प्रोग्राम योजनाएं नहीं कार्यक्रम हमेशा अच्छे होते हैं, कोई भी प्रोग्राम खराब नहीं होता, चाहे डीपीईपी हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम हो, आंध्र प्रदेश एजुकेशन प्रोजेक्ट हो, या बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट हो, या लोक जिम्बिस हो, या शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जब तक उनका क्रियान्वयन अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज सर्व शिक्षा अभियान है और अगर हम 2010 तक कुछ अचीव नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से कल सर्व शिक्षा सुपर सर्व शिक्षा अभियान आ जाएगा, ये सर्व शिक्षा अभियान भी उसमें मर्ज हो जाएगा, हम डेटा इकट्ठा करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, इस तरह के वर्कशॉप करते रहो, आप करते रहेंगे, डेटा भी आ जाएगा, धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ती रहेगी, बट अल्टीमेटली अगर जिस उपयोग के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये सारा सिस्टम हमने डेवलप किया है उसमें अगर ये भूमिका नहीं अदा कर पाए बिकॉज ऑफ द वन और द अदर रीजन, तो फिर कोई इसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आज आप सबको पता है, मेरे से ज्यादा हम सबसे पता है कि हर जिले के अंदर आप लोग हर बार दिस एनुअल प्लान बनाते हैं, एनुअल वर्क प्लान एंड बजट. हर जिले के अंदर एक टीम बनी हुई है, 12 सदस्य है, 14 सदस्य हैं, और उनकी ये जिम्मेवारी है कि सब साथ में बैठकर एक साथ बैठकर वो सारा एनालिसिस करें डेटा का, उसके बेसिस के ऊपर प्लानिंग करें. लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आज भी हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी जगह केवल एक या दो आदमी, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे वो जिला स्तर पर हो, एक या दो आदमी सारे प्लानिंग बनाते. और बहुत सी जगह तो मैंने देखा है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट, हमारे MIS कोऑर्डिनेटर हो, इवन बहुत सी जगह तो डिस्ट्रिक्ट का जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो प्लान बना रहे हैं, बना तो नहीं रहा है, बट ही इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ज्यादातर जगह पर. भाई ये तो डिस्ट्रिक्ट सर्व शिक्षा अभियान में तो ये नहीं था, उसमें तो लिखा हुआ है कि डाइट विल बी प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फॉर एज ए सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम इज कंसर्न. लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सी जगह डाइट का कोई रोल नहीं है, जहां पर डाइट को इन्वॉल्व किया गया है दे कुड नॉट एबल टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ द वन और द अदर रीजन. तो किस तरह की सर्व शिक्षा अभियान की प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं? ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सर्व शिक्षा अभियान इज नाउ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इवन दो इट इज गोइंग टू ओवर, which I believe that it will be extended till the right to education is there. So this is a great opportunity for all of us. जो बच्चे सिस्टम में आगे हैं उनको कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए ताकि मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग उनकी बन जाए, और जो सिस्टम में बच्चे नहीं है अभी भी विद्यालय से बाहर है उनको सिस्टम में कैसे ले आए. So we all are working for out of school children and also for children those who are in the system. तो सिस्टम में उनको कुछ पढ़ना लिखना सिखाना है, जो सिस्टम से बाहर है उसको विद्यालय में लेके आना है. केवल ये दो छोटे से काम हमें करने हैं, लेकिन ये इतने छोटे नहीं है जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एंश्योर दैट ऑल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रिटेन इन द सिस्टम. लेकिन मैं पर्सनली ये भी मानता हूँ कि अगर करीबन 120 मिलियन बच्चों में से, करीबन 12 करोड़ बच्चे में से अगर 4 या 5% बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर है, उनको विद्यालय में लाना अभी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, मार्जिनलाइज बच्चे हैं. उनको लाने का प्रयास हम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, करते रहेंगे. लेकिन मैं पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट हमें उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना है जो सिस्टम में ऑलरेडी आ गए. माँ बाप ने, पेरेंट्स ने उन अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी अच्छी तरह से निभा दी है, वो सिस्टम अपने बच्चों को भेज दिया है, वो सिस्टम में भर्ती हो गए. आपके जैसे इस क्लासरूम का जो क्राउडेड है PTR इसका कितना हो गया, 1:100 होगा. तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी है, बच्चे को स्कूल में भेज दिया है. लेकिन कुछ कारणवश इस क्लास के अंदर ऐसा कुछ है जिससे बच्चे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो स्कूल में बराबर नहीं आ रहे, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, एक साल रुकता है फिर छोड़ के चला जाता है, 1.5 साल रुकता है फिर चला जाता है, कोई वापस भी आ जाता है, ज्यादातर वापस भी नहीं आते हैं. तो जब तक हम सब ये बैठकर प्लानिंग टीम में, प्लानिंग प्रोसेस क्या हमारा है यहाँ पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि आप लोग भी वैसे ही करते हैं जैसे बाकी भारत में बाकी के राज्य करते हैं, जो 24 या 19 या 23 टेबल्स है उसमें भर के ले जाते हैं, या आपका सिस्टम जर्नलिस्ट वहाँ एडसीएम में जाके बैठ जाते हैं, वो सारे इंडिकेटर भर देते हैं. अरे भैया ये प्लानिंग नहीं है. अगर आपको ये करना है तो मेरे ख्याल से तो इस तरह की डाइस की डेटा की दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन हम पूरा उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं. उसका बहुत ज्यादा सदुपयोग हो सकता है. तो केवल टेबल के आधारित होकर हम प्लान अप्रूव करते हैं वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जो एकेडमिक एक्सरसाइज है उसको भी हमें पूरी करना चाहिए. और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश इसमें लीडरशिप ले सकता है. आप लोग अपने प्लानिंग टीम के जो मेंबर्स हैं, बिकॉज मुझे देखते हुए और कहते हुए बहुत ही कभी कभी आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड दैट एक राज्य के अंदर केवल एक ही ऐसा अधिकारी है जो आपके सभी सवालों का जवाब दे सकता है. वो ऐसा है क्योंकि एक ही आदमी उसमें इन्वॉल्व. मैं डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ. जैसे मध्य प्रदेश है और दूसरे राज्य है, हर स्टेट के अंदर एक एक आदमी मैं गिना सकता हूँ. लेकिन मुझे कोई ये एक्सरसाइज दे दे कि आप 4 या 5 आदमियों की लिस्ट बना दो जो डाइट भी जानता है, प्लानिंग भी जानता है, पैडागोजी भी जानता है, जेंडर भी जानता है, मैथ सब कुछ जानता है, तो मैं तो हाथ पांव फूल जाते हैं यार. मेरे को तो एक या दो से नाम से ऊपर ज्यादा नाम ही याद नहीं आते. तो दिस इज नॉट सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम. द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द टीम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हु कैन रीड द डेटा, हु कैन यूज द डेटा, हु कैन इंटरप्रेट द डेटा, हु कैन सी इज इम्प्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, लेकिन वो बात अभी बन नहीं पाई है। तो मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश से, और आज हम यहाँ जबलपुर में हैं, तो कम से कम रिकॉन्स्टिट्यूट करो आप इस टीम को, देखिए कौन कौन मेंबर इसमें बन सकते हैं, और केवल कागजी मेंबर नहीं चाहिए, कागजी चेहरा हमें नहीं चाहिए। बहुत साल से प्लानिंग बना रहे हैं, अगर उसका जो ऑब्जेक्टिव हमें दिया गया था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर इफ वी हैव नॉट रीच दैट वन, इफ वी आर नॉट मूविंग दैट वन, तो फिर उस प्लानिंग टीम का अगर कागज पे है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर हो या नहीं हो। एक आदमी अगर बनाने वाला है तो बनाने वो उससे कोई मतलब नहीं। तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट रिकॉन्स्टिट्यूट द प्लानिंग टीम, हैव द पर्सन दोज हु हैव गुड नॉलेज इन डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, प्लानिंग मेथोडोलॉजी एंड ऑल। और मेरा निश्चित रूप से मानना है कि हर जिले के अंदर अब डीपीपी की वजह से या सर्व शिक्षा अभियान की वजह से हिंदुस्तान में अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। आप लोग 5 या 6 साल पहले 4 साल पहले आप ये नहीं जानते थे कि जीआर क्या होता है, एनईआर क्या होता है। अब आज की स्थिति के अंदर हिंदुस्तान के हर जिले के अंदर हमारे जो काम करने वाले दायित्व से जुड़े हुए या प्लानिंग टीम से जुड़े हुए जो मेंबर है वो कम से कम इतना तो जान गए हैं कि जीआर एनईआर में डिफरेंशिएशन क्या है, क्या फर्क है। वो ये भी जान गए कि रिटेंशन का मतलब क्या है, वो ये भी जान गए कि ड्रॉपआउट रेट क्या है, ट्रांजिशन रेट भी जानने लग गए हैं, और प्रमोशन और रिपीटेशन रेट भी जानने लग गए हैं। और लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें, ये सारी चीजें अगर प्लान बनाने में, प्लान में अगर उभर कर नहीं आ रही है, तो फिर ये हमारी जानकारी किस काम की। क्योंकि हमने अभी भी देखा है हिंदुस्तान में हजारों स्कूल ऐसी है जो सिंगल टीचर स्कूल है, 1,23,000 स्कूल सिंगल टीचर स्कूल है, उसमें बहुत सारी मध्य प्रदेश में भी है। बिकॉज आपने रातों रात एजीएस को प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, ज्यादातर ये सारे स्कूल पैरा टीचर थे जो अब गुरुजी थे वो अब हमारे रेगुलर टीचर बन गए हैं। हिंदुस्तान में अभी भी करीबन 70,000 स्कूल ऐसी है जहां पर केवल गुरुजी है, पैरा टीचर ही है, एक भी हमारा रेगुलर टीचर नहीं है। सैकड़ों स्कूल, करीबन 4,00,000 स्कूल ऐसी है जहाँ लड़कियों के टॉयलेट नहीं है, 2-2.5 लाख स्कूल ऐसी है जहाँ पर पीने का पानी नहीं है, सैकड़ों स्कूल ऐसी है जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, सैकड़ों स्कूल ऐसी है जहाँ पर रैंप नहीं है। कंप्यूटर की तो बात छोड़ दीजिए, केवल 10-13-14% स्कूल के अंदर कंप्यूटर है। हम बात करते हैं ऑनलाइन डाइट को, सिस्टम को कर दीजिए, सर आप बहुत पीछे रह गए, क्या अभी भी आप ऑफलाइन ही करवा रहे हैं? तो आपकी जो सुझाव आप लोग देते रहते हैं पर्सनली, हालांकि हम मानते हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाइस, जहां तक डाइस का सवाल है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वन टाइम अफेयर है। नंबर वन। नंबर टू, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वी डू नॉट हैव द कंप्यूटर। और भाई डेटा एंट्री ऑनलाइन सिस्टम अगर हम डेवलप करें तो डेटा एंट्री तो स्कूल से होनी चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर दिया और डेटा एंट्री ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पे सब स्कूलों की एक साथ हो रही है, इट इज नॉट ऑनलाइन, क्योंकि दूसरे सिस्टम में भी ऐसा ही हो रहा है। तो हमारा ये निश्चित रूप से मानना है कि ऑनलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनलेस अंटिल वी हैव द कंप्यूटर्स इन द स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी इन द स्कूल। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बिजली नहीं आती है, यूपीएस भी पूरा चार्ज नहीं होता है, तो किस तरह के हम ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने जो आप लोग सुझाव देते रहते हैं, कमेंट्स भी आप लोग मारते हैं कि साहब अभी भी आप ऑफलाइन ही चल रहे हैं, ऑनलाइन कब करेंगे? तो आपके प्रयास को मद्देनजर रखते हुए हमने नीपा में एक एक्सरसाइज शुरू की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हम लॉन्च करने की स्थिति में होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और हमने ये प्रयास हम करेंगे कि ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। ऑफलाइन डेटा आप पंच करके ऑनलाइन डाल दो, ऑनलाइन डेटा पंच करके उसको डाउनलोड करके डीबी फॉर्म में किसी भी फॉर्म में डाउनलोड करके ऑफलाइन ले आओ, और ऑफलाइन में हिंदुस्तान के सभी 635 जिलों के अंदर हमारे डाई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, उसको डेटा को सीधा आप एक्सपोर्ट कर दो, सारी टेबल्स आपके पास में, रिपोर्ट्स आपके पास में, सब कुछ आ जाएगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम इसको जल्दी ही किसी न किसी छोटे राज्यों में, जैसे चंडीगढ़ है या दमन एंड दीव है, वहां हम खुद पंच करके इसको सारा टेस्ट करके कोशिश करेंगे ताकि और अच्छा सुधार हो जाए, गुणवत्ता बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, कवरेज बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए। शैलेंद्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी है, जहां तक आगे आने वाले वर्ष के अंदर प्लानिंग की जो रूपरेखा होने वाली है, जो प्लानिंग के जो प्रोसीजर होने वाले हैं, और जो एम्फेसिस इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं ये कहूंगा, उन्होंने कही है कि अब से स्कूल बेस्ड प्लानिंग होगी, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडिकेटर पीटीआर एससीआर और ये सब नहीं देखेंगे, अब आप स्कूल वाइज देखेंगे कितने स्कूल में टीचर है, राइट टू एजुकेशन के मद्देनजर 1 to 40 है या 40 से 60 के बीच में 61 से वो है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। और डेफिनेटली आप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग कोऑर्डिनेटर जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये सारी जानकारी आप उसको देंगे। हालांकि मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि डेटा जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डाइट के मार्फत हम जो इकट्ठा करते हैं, दैट इज नॉट आवर पर्सनल प्रॉपर्टी, ये हमारा कोई पर्सनल नहीं है। इट इज टू बी यूज्ड, इट इज नॉट टू बी कैप्ट अंडर द लॉक एंड की, इट शुड बी पुट अंडर द पब्लिक डोमेन, इट शुड बी थोरली एडिक्वेटली ऑप्टिमली डिसमिनेटेड, तब जाके ही हम ऐसा कुछ कर पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे डेटा यूटिलाइज हो जाए। तो जहां तक राइट टू एजुकेशन की सवाल है, अब आप लोग डेटा आपके पास में है, अभी इस साल तो शायद नहीं आएगा क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अभी कुछ भी नहीं है, बट यू हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फार एज द डिसेमिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग ऑल द वेरिएबल्स इंक्लूडिंग द राइट टू एजुकेशन वेरिएबल्स आर कंसर्न। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे स्कूल रिपोर्ट कार्ड है उसको मॉडिफाई करें या एक अलग से वेरिएबल्स का एक नया पेज जोड़ दें उसमें राइट टू एजुकेशन के, मिड डे मील के, और जो बाकी हमने वेरिएबल बहुत सारे इसमें डाले हैं कुछ तो परिवर्तित करके मॉडिफाइड करके मेन स्कूल रिपोर्ट कार्ड में आ जाए, बाकी के एक सेपरेट पेज में जब आप क्लिक करेंगे तो आरटी एनेबल जो वेरिएबल्स होंगे एमडीएम वाले होंगे वो सब आपके सामने उभर के आ जाएंगे। तो जो स्कूल वाइज एनालिसिस आप करने वाले हैं ये उसमें आप हमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग टीम है, कोऑर्डिनेटर्स है, जो बाकी के मेंबर्स है, उसको आपको अगर नहीं भी मांगे तो आपको सारी जानकारियां उनके साथ में शेयर करनी चाहिए। उसके बाद में मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि इन सब अचीवमेंट के बाद में जैसे शैलेंद्र ने भी कहा और हमारे सीईओ साहब ने भी कहा कि साहब अभी बहुत सारी कमियां हैं, हम मानते हैं, ये मानते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि डाइस इज नॉट फ्री फ्रॉम एरर्स, हमें पता है ये कोई नई बात नहीं है, वी नो वेयर आर व्हाट आर आवर लिमिटेशंस, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू फर्दर इंप्रूव, एंड आई वी ऑलरेडी सेड दैट इट इज नॉट वन टाइम अफेयर, इट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इट विल टेक इयर्स टू फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा, धीरे धीरे निरंतर सुधार हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब लोग नहीं जानते हैं हमारा कहाँ कहाँ कमियां हैं, तो अब निश्चित रूप से अब आप जब आप वापस जाएंगे आपकी अभी तक डेटा एंट्री शुरू नहीं हुई है तो सबसे पहले आप डेटा एंट्री करेंगे, मेरे पक्का विश्वास है जैसा कि आपको सुझाव दिए गए थे संकुल स्तर पर 100% 100% चेकिंग की जानी थी, खंड स्तर पर 25% चेकिंग की जानी थी, उसके बाद में ब्लॉक राज्य जिला स्तर पर भी चेकिंग की जानी थी। मुझे पक्का विश्वास है कि आपने ये सब किया होगा और अब आप बिल्कुल डेटा एंट्री के लिए तैयार हैं। मुझे ये भी पक्का विश्वास है कि आप लोगों ने मास्टर लिस्ट है अगर आपके पास में है तो उसे मिला लिया होगा, कौन से स्कूल छूट गई है, कौन से स्कूल अभी भी हमसे जुड़ने वाली है, और अगर अभी भी नहीं जुड़ी है तो आप निश्चित रूप से प्रयास करें, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, ये सारे लेटर्स हमारी dice.in के ऊपर रखे हुए हैं जो MHRD ने हमें दिए हैं, शायद आपको मदद करे कि उन स्कूल तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है हमारे CRC कोऑर्डिनेटर बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं उसमें अंदर भी नहीं जा सके, और अगर अंदर जा सके तो ये भी पक्का विश्वास नहीं है कि वो फॉर्म भर के आ जाएगा, और अगर फॉर्म भर के भी आ गया तो हमें ये पक्का विश्वास नहीं है कि पूरा फॉर्म भर के आ जाएगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट हमारी क्वालिटी, गुणवत्ता, कवरेज ये सब बढ़ेगी। उसके बाद में जैसे हम कह रहे थे कि कमियां तो हमारे डेटा में अभी भी है, आप जाएंगे डेटा पंचिंग करेंगे, और अगर हम तो आपसे ये निवेदन करेंगे जब डेटा पंचिंग हो जाए आप लोग हर स्कूल वाइज इसका रिपोर्ट कार्ड निकाल दीजिए। डाइस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर एक बटन दबाने से ब्लॉक वाइज सारे डिस्ट्रिक्ट स्कूल रिपोर्ट कार्ड आ जाएंगे, आ जाता है आपको पता है, क्लस्टर वाइज सारे स्कूल रिपोर्ट कार्ड आ जाते हैं, वो भरे हुए रिपोर्ट जो है पंचिंग के बाद में इन रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट करके आप वापस स्कूल तक ले जाके, बिकॉज हमारी ये कमी ये है कि जब हम डेटा पंचिंग कर देते हैं तो उसका कोई चेकिंग नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि डेटा सही पंच हुआ या नहीं हुआ, उसका एक ही निराकरण हम कर सकते हैं कि जब डेटा पूरा फीड हो जाए तो स्कूल वाइज आप ब्लॉक में जो सारी स्कूल्स है, क्लस्टर में जो सारी स्कूल्स है, वो सबको आप प्रिंट करके वापस CRC की मार्फत उन स्कूल तक अगर दिखवा दें कि साहब ये सही है, तो एक तो काम हमें ये करना चाहिए। और निश्चित रूप से आप जो डाइस के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कंसिस्टेंसी मॉड्यूल है उसको चेक करके देखेंगे, चला के देखेंगे, आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा यहाँ पर कंसिस्टेंसी मॉड्यूल क्यों है, क्या है। अगर हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए, सारे प्रयासों के बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं हिंदुस्तान में कि वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दैट वन, तो आप इस बार ये प्रयास करें, जब कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चला दें तो आप दो मेल टीचर और दो फीमेल टीचर, वो चार ही आना चाहिए, पांच नहीं आना चाहिए। टू गुड रूम्स दैट नीड माइनर रिपेयर एंड टू रूम्स दैट नीड मेजर रिपेयर, ये छह ही होना चाहिए, दस नहीं होना चाहिए। अगर 10 हुआ तो जब आप कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चलाएंगे तो उस मॉड्यूल के अंदर स्क्रीन के ऊपर सब कुछ स्टार्ट से भर जाएगा। तो डाइस के अंदर हमारी मानना है जितना ज़्यादा स्टार होंगे डेटा की गुणवत्ता उतनी ही खराब। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके पास में आपके जिले के अंदर जब आप कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चलाएं तो बिल्कुल स्टार नहीं हो, तभी आप जाके 5 स्टार होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप 5 स्टार बने, लेकिन हमारे डेटा के कंसिस्टेंसी मॉड्यूल के अंदर एक भी स्टार नहीं, ये निवेदन हम आपसे कर रहे हैं। तीसरी बात पहले भी कही जा चुकी है, बार बार कहते आए हैं, फिर भी कहने की जरूरत है कि हमारा एनरोलमेंट बाय ग्रेड, एनरोलमेंट बाय एज और एनरोलमेंट बाय मीडियम स्ट्रक्चर और बाय कैटेगरी जो है वो तीनों बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं, अभी भी सारे प्रयास करने के बाद भी। और जब डेटा पंचिंग भी करते हैं तो स्क्रीन भी आपकी रेड हो जाती है अगर इनकंसिस्टेंसी है तो इन सारे प्रयासों के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये तीनों इंडिकेटर नहीं मिलते हैं। तो आप प्रयास कर सकते हैं निश्चित रूप से कि इस बार कम से कम जगहों के ऊपर इनके अंदर डिफरेंस हो। उसके बाद में एक बात हम कर रहे थे नेगेटिव ड्रॉपआउट रेट की। नेगेटिव ड्रॉपआउट रेट का मतलब है कि इस साल का एनरोलमेंट किसी ग्रेड के अंदर पिछले साल के एनरोलमेंट, पिछली कक्षा के एनरोलमेंट से भी ज़्यादा है। अगर आपके पास में वैलिड रीजन है, आपको ये पता है कि पिछले साल एनरोलमेंट कक्षा एक के अंदर 25 था और कक्षा टू के अंदर इस बार हमारा 35 हो गया है और ये 10 बच्चे अतिरिक्त कहाँ से आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कारण पता होना चाहिए। अगर कारण पता नहीं है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो अगर ऐसा है तो इन वजहों से सारे प्रयास करने के बाद भी आज बहुत सारे 4-5 ऐसे स्टेट हैं वहाँ पर अभी भी नेगेटिव ड्रॉपआउट रेट आ रही है। लेकिन अगर हम राज्य जिला स्तर पर जाएं तो ये 5-6 स्टेट बढ़ के 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर ब्लॉक पे जाएं तो हो सकता है ये 500 हो जाए, और अगर बॉयज और गर्ल्स अलग अलग करें तो हो सकता है ये 3-4 हज़ार हो जाए। तो अभी भी सीधा साधा इसका कहने का तात्पर्य ये है कि डेटा की कंसिस्टेंसी के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो हम आपके माध्यम से उसको ठीक करना, आपके माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है, और कोई ऐसा साधन नहीं है तो हम इसको ठीक करवा दें। तो आप अगर क्लस्टर लेवल पे आपने निश्चित रूप से ट्रेनिंग दी होगी, अगर आपने नहीं करवाया होगा ये सारा चेकिंग, तो आपको अभी भी चेकिंग करवा लेनी चाहिए। आरटी के वेरिएबल्स के ऊपर शैलेंद्र ने सारा प्रकाश डाल दिया है, मैं और उसमें आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरटी वाले जो सारे वेरिएबल्स हैं वो मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्यों में खाली आने वाले हैं। इस वर्ष हम नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत कम समय बचा था डेटा कैप्चर फॉर्मेट को रिवाइज करने का, और हमने ये चाहा कि इसको अगले साल तक टाल दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली डेटा कैप्चर फॉर्मेट 2010-11 इज रिवाइज एंड इट इज इन यूज। हमारा ये मानना है, और हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी ये हमें समझाने की कोशिश की कि यू स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं हुआ है तो 2010-11 डेटा विल बिकम ए बेंच मार्क डेटा सो फार एज द राइट टू एजुकेशन इज कंसर्न। आज से 5 साल बाद हम ये कहेंगे कि 2010-11 में जब 1 अप्रैल को राइट टू एजुकेशन लागू हो गया था तो कितने स्कूल के अंदर SMC थी, कितने के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, या जो सारे वेरिएबल हमने डाले हैं। तो ये बेंचमार्क डेटा बनेगा, अगर खाली आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि बताया गया कि अब आप के यहाँ भी लॉन्च होने ही वाला है राइट टू एजुकेशन अधिनियम, तो निश्चित रूप से अगले साल आपको अगर आउट ऑफ अगर अनरिकॉग्नाइज स्कूल है तो उनका भी ध्यान रखना है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स है उसका क्लासिफिकेशन, उसका कितने मेंबर्स है आउट ऑफ टोटल मेंबर्स, कम्युनिटी के कितने मेंबर्स है, PTA के कितने मेंबर्स है, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में भी, और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में 25% बच्चों को कितनों ने अप्लाई किया और कितने बच्चों को कक्षा 1 के अंदर एडमिशन दिया गया, इसी तरह एडेड स्कूल के अंदर कितने बच्चों को क्लास वन के अंदर फ्री एजुकेशन मुहैया करवाई गई, और टीचर का वर्कलोड है, टीचर का या स्टूडेंट का जो पीरियड ऑफ स्टे है, आवर्स ऑफ स्टे है, ये डेटा निश्चित रूप से इस बार आपके यहाँ आएगा, क्योंकि इसका राइट टू एजुकेशन से कोई सीधा साधा मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हर स्कूल के अंदर उपलब्ध है। और लास्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल आप सब ने इस बार डाला है वो अटेंडेंस रेट है। अटेंडेंस रेट को भी अच्छी तरह से हमें इस बार एनालाइज करना है। जब ये सारा डेटा आपके पास में आ जाएगा तो डाइस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप देख पाएंगे कि अटेंडेंस रेट आपके जिले के अंदर और ब्लॉक स्तर पर क्या है, और उसमें अगर कमी है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो डेफिनेटली हमें ये सारे प्रयास करेंगे। मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले वर्षों में आप जब अगले साल का प्लान बनाएंगे तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य के सभी 51 जिलों के अंदर कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें एनरोलमेंट नहीं हो, और कारण उसके कारण हमें पता होना चाहिए। स्कूल विदाउट एनरोलमेंट, स्कूल विदाउट ब्लैक बोर्ड, स्कूल विदाउट टीचर, स्कूल विदाउट बिल्डिंग, स्कूल विदाउट इंस्ट्रक्शनल रूम, और वी विल ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर दैट इन द एंटायर मध्य प्रदेश एवरी स्कूल इज हैविंग द टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स, जैसा शैलेंद्र ने बताया। अब आगे आने वाले समय में केवल रूरल एरिया के अंदर ही ये सब दिए जाएंगे, अर्बन एरिया में केवल गर्ल्स टॉयलेट दिए जाएंगे, रूरल एरिया में अब नहीं दिए जाएंगे। तो ये सब तभी संभव होगा, तब हमारा प्लानिंग का जो पर्टिकुलर एक स्टेज है डायग्नोसिस ऑफ द स्टॉक टेकिंग, वो अगर फ्रूटफुल है, वो एडिक्वेट है, वो अगर रिग्रेस है, इफेक्टिव है, तभी जाके आप ये पता कर पाएंगे। वेबसाइट के ऊपर मैं तो कहता हूँ वेबसाइट पे हम क्यों डालें, कितने स्कूल के अंदर आपका पीटीआर सही नहीं है, एसईआर सही नहीं है, हम तो आपका काम कर रहे हैं, जबकि ये डेटा तो आपने हमें दिया है, आप खुद क्यों नहीं करते हैं? जब अगले साल की प्लानिंग करें तो वो लिस्ट आपके खुद के पास में है, आप निकालिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, हर जगह निकालिए कौन कौन से स्कूल के अंदर पीटीआर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मोर देन एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स आर अवेलेबल, एससीआर नहीं है, और उसके प्रावधान करें। अगर आप प्रावधान करेंगे तभी जाके ये संभव होगा कि आगे एक दो सालों के अंदर हमारी स्थिति सुधर जाए। और महत्वपूर्ण बात और है, अगर आप प्लान में ये सब डाल भी दें, और जैसा यहाँ पे भी बताया गया है कि जब सैंक्शन होके आता है तो वो दूसरी जगह खुल जाते हैं साहब, बिकॉज ऑफ द वन और द अदर रीजन, अगर मिनिस्टर साहब है या और कोई प्रभावित लोग है, स्कूल लीडर है, विलेज लीडर है, डॉक्टर है, हेडमास्टर है, वो अपना प्रभाव यूज करके जहां पर एडिशनल क्लासरूम की जरूरत नहीं है वहां पे भी एडिशनल क्लासरूम बना देते हैं। तो हर साल जब आप प्लान बनाएंगे, जैसा कि शैलेंद्र ने बताया कि आपका नंबर तो वही रहेगा, तो प्रायोरिटाइजेशन आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग टीम है दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम तो आपको केवल बता सकते हैं कि इस तरह से नियोजन किया जा सकता है, और ज्यादा अगर मध्य प्रदेश शासन चाहता है कि प्लानिंग मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी ट्रेनिंग की जाए तो आप नीपा से वाइस चांसलर साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपके सभी जिलों के सभी जो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं उन सबकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप हर बार हमारे जो 50 प्रोग्राम हम नीपा में बैठ के करते हैं उसमें भी आपकी भागीदारी रहती है। मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि और हर प्रोग्राम में आप 2-3-4 लोग भेजिए, तो धीरे धीरे प्रयास करके सारे लोग हमारे ट्रेन हो जाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग तो एक बात है, दूसरी बात यह है कि जब ट्रेन होके आज हमारा ऑफिसर वापस मध्य प्रदेश शासन राज्य में आ जाता है उसका क्या होता है? आर वी रियली सीरियस अबाउट इट? मैं आपको ये कहता हूँ जो नेपाल से ट्रेनिंग लेके आते हैं, मैं छोटी मोटी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 वीक या 15 दिन के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने का डिप्लोमा इन एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। आज की तारीख में अगर मुझे ये कोई बता दे मध्य प्रदेश से कितने लोग हैं जो डीपा करके आए हैं और कितने लोग वो काम पर काम कर रहे हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं जो ट्रेनिंग के हिसाब से उनका क्या हम यूज कर रहे हैं? मैं कहते हुए मुझे आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, ज्यादातर वी आर नॉट सीरियस, बात तो हम बहुत करते हैं लेकिन जब एक्चुअल काम की बात आती है तो ऐसा आदमी, ऐसे अधिकारी को हम वहाँ नियुक्त कर देते हैं जिसका प्रशिक्षण ही नहीं हुआ है, उसका कोई ऐसा ओरिएंटेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और जिला में बैठे हुए जो अधिकारी गण हैं, दे कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पुटिंग अप द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, देन ओनली ट्रेनिंग विल बी यूजफुल। इस तरह के ओरिएंटेशन है वो सब यूजफुल होंगे, तो आपके प्रयास से ही मैं ये निश्चित रूप से ये उम्मीद करता हूँ कि 2010-11 में हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारा कवरेज बढ़ेगा, डिसेमिनेशन बढ़ेगा, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, और लास्ट के अंदर जब प्लान बनाएंगे तो आप सब लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है आप सब लोग स्टेट प्लानिंग टीम अगर है वास्तव में तो उसके मेंबर हैं, और अगर नहीं भी हैं तो यू आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सारा डेटा तो आप लोग ही देते हैं। आपने जो भी प्रयास किए हैं अभी तक, ये सारी उपलब्धियां आपके प्रयास के से ही हासिल हुई है, और आपके पार्टिसिपेशन की, एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से, जैसे आप सब लोग जानते हैं 2010 जो वर्ष है वो डाइस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। उस इस वर्ष में आपने जो भी प्रयास किए हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिकॉग्निशन मिला है। जहां तक राष्ट्रीय स्तर की बात है, 2010 में फरवरी में मैं शैलेंद्र नवीन तब जयपुर गए थे और ई गवर्नेंस का अवार्ड आपके लिए लेके आए, लेकिन हमने वो अवार्ड केवल रिसीव किया है बट ऑन योर बिहाफ ओनली, जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से मिला, वी हैव प्रेजेंटेड यू एट द नेशनल लेवल। तो और फिर अगस्त के अंदर मैं हैदराबाद गया और ई इंडिया नेशनल अवार्ड है वो भी हम आपके लिए लेके आए हैं, आपके बेसिस को बिहार के ऊपर रिसीव किया, और मुझे कहते हुए फिर गर्व हो रहा है कि अभी 18 दिसंबर को एक और राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है, मंथन अवार्ड, वहां पर भी आपका प्रोजेक्ट है जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड अंडर द प्रोजेक्ट डाइस, उसको फाइनलिस्ट के रूप में रखा गया है, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगले बार जब वर्कशॉप होगी तो हम 3 अवार्ड के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।